भारतीय दर्शन का चौथा चैप्टर है पौध दर्शन। पहला विषय प्रवेश। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। ये बचपन में सिद्धार्थ कहलाते थे। ईसा से पूर्व 6वीं शताब्दी में हिमालय तराई के कपिलवस्तु नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। युवावस्था में ही इन्होंने घर परिवार छोड़कर संन्यास धारण किया। जरा मरण के दृश्यों को देखने से इनके मन में यह विश्वास पैदा हुआ कि संसार में केवल दुख ही दुख है, अतः दुख से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सन्यासी बनकर इन्होंने दुखों के मूल कारण को तथा उनसे मुक्त होने के उपायों को जानने का अथक प्रयत्न किया। धर्मोपदेशकों तथा प्रगाढ़ पंडितों से शिक्षाएं ली, तपस्याएं भी की, लेकिन सफलता न मिलने पर ये बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गए। दृढ़ संकल्प के साथ शुद्ध मन से ये घोर साधना में लग गए और इस तरह दुख के रहस्य को समझने की अखंड चेष्टा की। अंत में इनको सिद्धि मिली। ये बोधि यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध कहलाए। इसी बोधि के आधार पर बौद्ध धर्म तथा बौद्ध दर्शन कायम हुए हैं। आगे चलकर बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ। यहाँ तक कि दक्षिण में लंका, ब्रह्मा तथा श्याम और उत्तर में तिब्बत, चीन, जापान तथा कोरिया तक इसका संदेश पहुँच गया। प्राचीन काल के अन्य धर्मोपदेशकों की तरह महात्मा बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार मौखिक रूप से ही किया। उनके शिष्यों ने भी बहुत काल तक उनके उपदेशों का मौखिक ही प्रचार किया। बुद्ध के निजी उपदेशों का जो कुछ भी ज्ञान हमें आजकल प्राप्त है वह त्रिपिटकों से ही हुआ है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के वचन और उपदेशों का संकलन उनके निकटतम शिष्यों के द्वारा त्रिपिटकों में हुआ है। त्रिपिटकों के अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। प्रत्येक पिटक में अनेक ग्रंथ हैं, इसीलिए पिटक यानी पेटी नाम पड़ा। विनय पिटक में संघ के नियमों का, सुत्त पिटक में बुद्ध के वार्तालाप और उपदेशों का तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संग्रह हुआ है। इन पिटकों में केवल प्राचीन बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। इनकी भाषा पाली है। कालांतर में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई और वे कई संप्रदायों में विभक्त हो गए। धार्मिक मतभेद के कारण बौद्ध धर्म की दो प्रधान शाखाएं कायम हुई जो हीनयान तथा महायान के नाम से प्रसिद्ध हैं। हीनयान का प्रचार भारत के दक्षिण में हुआ। आजकल इसका अधिक प्रचार लंका, ब्रह्मा तथा श्याम में है। पाली त्रिपिटक ही हीनयान के प्रधान ग्रंथ हैं। महायान का प्रचार अधिकतर उत्तर के देशों में हुआ। इसके अनुयायी तिब्बत, चीन तथा जापान में अधिक पाए जाते हैं। महायान का दार्शनिक विवेचन संस्कृत में हुआ है, अतः इसके ग्रंथों की भाषा संस्कृत है। इन ग्रंथों का अनुवाद तिब्बत और चीनी भाषाओं में हुआ है। बौद्ध साहित्य के अनेक ग्रंथ जो भारत में अप्राप्य हैं, तिब्बती या चीनी अनुवादों के द्वारा पुनः प्राप्त हो रहे हैं और उन्हें फिर से संस्कृत में अनुदित किया जा रहा है। बौद्ध धर्म का प्रचार अनेक देशों में हुआ है। जहाँ जहाँ इसका प्रचार हुआ वहाँ के प्रचलित मतों की छाप भी इस पर पड़ी। इस तरह बौद्ध धर्म की अनेक शाखाएं कायम हुई। इसका फल यह हुआ कि इसके साहित्य का विस्तार अनेक भाषाओं में हुआ है। इसलिए समूचे बौद्ध साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना एक विद्वान के लिए असंभव सा है। यहाँ बौद्ध दर्शन का एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। सबसे पहले हम त्रिपिटक के अनुसार बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख करेंगे। उसके बाद हम बौद्ध दर्शन की प्रधान शाखाओं का वर्णन करेंगे और अंत में हीनयान तथा महायान के धार्मिक विचारों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। बौद्ध दर्शन का दूसरा टॉपिक है बुद्ध के उपदेश, चार आर्य सत्य। पहला विवाद परांग मुक्ता। कुछ त्रिपिटक ग्रंथों से मालूम होता है कि बुद्ध के समय में और उससे पूर्व आत्मा, जगत, परलोक, पाप, पुण्य, मोक्ष आदि के संबंध में घोर विवाद, तर्क वितर्क होते थे। अप्रत्यक्ष विषयों की कोई मीमांसा तर्क से नहीं होती थी। बुद्ध का अंतिम ध्येय अप्रत्यक्ष दार्शनिक तत्वों का विचार नहीं था, बल्कि यह दिखलाना था कि जीवों के दुख का किस प्रकार अंत हो सकता है। यदि कोई उनसे पूछता था कि आत्मा शरीर से भिन्न है या नहीं, आत्मा अमर है या नहीं, संसार शांत है या अनंत, नित्य है या अनित्य, तो वे मौन धारण कर लेते थे। उनका कहना था कि जिन विषयों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रमाण न हो, उनके समाधान की चेष्टा व्यर्थ है। अंधे जब हाथी का स्पर्श करते हैं तो वे हाथी का भिन्न भिन्न वर्णन करते हैं। जो जिस भाग का स्पर्श करता है, उनकी समझ में हाथी का आकार उसी प्रकार होता है। किसी को भी हाथी का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। बुद्ध ने पूर्व प्रचलित अनेक दार्शनिक मतों को युक्तिहीन और निराधार प्रतिपादित किया। उन्होंने अप्रत्यक्ष और संदिग्ध दार्शनिक विचारों के बारे में तर्क का परित्याग इसलिए भी किया कि जो उससे अहर्ता या विमुक्ति प्राप्त करने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती है। जो मनुष्य तर्क के जाल में प्रवेश करता है, वह उसमें बुरी तरह फंस जाता है। दुख निरोध की समस्या ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दुखों से पीड़ित रहते हुए भी आत्मा तथा जगत के मूल तत्वों के अनुसंधान में लगा रहना बड़ी भारी मूर्खता है। जिस प्रकार शरीर में विषाक्त बाण के चुभे रहने पर उसको निकाल कर फेंकने के बजाय उसके बनाने वाले या फेंकने वाले की जाति, रंग, निवास आदि के अनुसंधान में समय नष्ट करना मूर्खता है। पुट्टपाद सूत्र के अनुसार महात्मा बुद्ध ने 10 प्रश्नों का समाधान असंभव तथा व्यावहारिक दृष्टि से व्यर्थ समझा है। अतः उन प्रश्नों के समाधान का उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया है। वे प्रश्न इस प्रकार हैं: पहला, क्या यह लोक शाश्वत है? दूसरा, क्या यह अशाश्वत है? तीसरा, क्या यह शांत है? चौथा, क्या यह अनंत है? पांचवा, आत्मा तथा शरीर क्या एक ही हैं? छठवा, क्या आत्मा शरीर से भिन्न है? क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म होता है? आठवा, क्या मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता? नौवा, क्या पुनर्जन्म होता भी है, नहीं भी होता है? दसवां, क्या उनका पुनर्जन्म होना और न होना दोनों ही बातें असत्य हैं? बौद्ध धर्म के पाली साहित्य में इन प्रश्नों को अव्याकतानि कहते हैं। इनकी संख्या कहीं 10 से अधिक भी मिलती है। जैसे अंतिम प्रश्न की 4 कोटियां यहाँ हैं, वैसे ही और तीनों प्रश्नों की 4-4 कोटियां हो सकती हैं। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 16 हो सकती है। इन प्रश्नों का विवेचन व्यवहारिक दृष्टि से निष्फल है तथा उनका असंदिग्ध ज्ञान मिल भी नहीं सकता। अतः बुद्ध ने उसका कभी विवेचन नहीं किया। इसके बदले उन्होंने दुख, सुख के कारण, दुख निरोध तथा दुख निरोध मार्ग जैसे अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर उपदेश दिया और कहा, इसी प्रकार के विवेचन से लाभ हो सकता है। इसी को धर्म के मूल सिद्धांतों से संबंध है। इसी से अनासक्ति, तृष्णाओं का नाश, दुखों का अंत, मानसिक शांति, ज्ञान, प्रज्ञा तथा निर्वाण संभव हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षा का सारांश उनके 4 आर्य सत्यों में निहित है। इन्हीं आर्य सत्यों का उपदेश बुद्ध ने जनसाधारण को दिया है। ये 4 आर्य सत्य हैं: पहला, सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा, दुखों का कारण है। तीसरा, दुखों का अंत संभव है। चौथा, दुखों के अंत का उपाय है। इन्हें क्रमशः दुख, दुख समुदाय, दुख कारण, दुख निरोध मार्ग कहते हैं। गौतम बुद्ध के अन्य सभी उपदेश इन्हीं आर्य सत्यों से संबंध है। चार्वाकेतर सभी भारतीय दर्शन इन 4 आर्य सत्यों को किसी न किसी रूप में मानते हैं। दूसरा है प्रथम आर्य सत्य, दुख। रोग, जरा तथा मरण के दुखमय दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का मन विकल हो गया था। किंतु जब सिद्धार्थ बुद्ध हुए तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानव तथा मानवेतर जीवन सभी दुख से परिपूर्ण है। जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, क्लेश, आकांक्षा, नैराश्य सभी आसक्ति से उत्पन्न होते हैं, अतः ये सभी दुख हैं। क्षणिक विषयों के लिए आसक्ति ही पुनर्जन्म तथा बंधन का कारण होती है। बुद्ध ने जो सांसारिक जीवन को बिल्कुल दुखमय बतलाया है, इसे चार्वाक नहीं मानते हैं। वे यह कहते हैं कि दुखों के साथ साथ जीवन में सुख प्राप्ति के भी अनेक साधन हैं। किंतु महात्मा बुद्ध तथा अन्य भारतीय विद्वानों का इसके विरुद्ध यही उत्तर होगा कि सांसारिक सुखों को यथार्थ सुख समझना केवल अदूरदर्शिता है। सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, वे क्षणिक होते हैं, उनके नष्ट हो जाने पर दुख ही होता है। ऐसे सुखों के साथ बराबर यह चिंता लगी रहती है कि कहीं वे नष्ट न हो जाएं। इस तरह के अनेक दुखद परिणाम हैं जिनके कारण सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं समझे जा सकते हैं, वरन वे तो आशंका और चिंता के मूल हैं। तीसरा, द्वितीय आर्य सत्य, द्वादश निदान। दुख के अस्तित्व को तो सभी भारतीय दार्शनिक मानते हैं, किंतु दुख के कारण संबंध में सभी एकमत नहीं। महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार दुख के कारण को जानने का प्रयत्न किया है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार संसार का कोई भी विषय बिना कारण नहीं है, सभी के कुछ न कुछ कारण हैं। अतः जब तक कुछ कारण नहीं रहे तब तक दुख की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जीवन में अनेक दुख हैं, जैसे जरा, मरण, नैराश्य, शोक इत्यादि। जीवन के दुखों का सांकेतिक नाम जरा मरण है। प्रश्न यह उठ सकता है कि जरा मरण का कारण क्या है? शरीर धारण करना ही जरा मरण का कारण है। शरीर धारण न हो तो जरा मरण नहीं हो सकता, अर्थात जन्म ग्रहण या जाति ही दुख का कारण है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार जन्म का भी कारण होगा। जन्म का कारण भव है। जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भव कहा जा सकता है। इस प्रवृत्ति का क्या कारण है? सांसारिक विषयों के प्रति जो हमारा उपादान अर्थात उनके लिपटे रहने की अभिलाषा है, वही हमारी जन्म प्रवृत्ति का कारण है। यह उपादान भी हमारी तृष्णाओं अर्थात शब्द, स्पर्श आदि विषय भोग करने की वासनाओं के कारण होता है। किंतु यह तृष्णा कहाँ से आती है? तृष्णा का कारण हमारा पहले का विषय भोग है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो हमें वेदना अर्थात सुखानुभूति होती है, उसी से हमारी तृष्णा जगी रहती है। अतः तृष्णा का कारण वेदना है। किंतु वेदना या इंद्रियानुभूति बिना इंद्रिय स्पर्श के नहीं हो सकती है, अर्थात इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क आवश्यक है। अतः वेदना के लिए स्पर्श आवश्यक है। स्पर्श भी बिना ज्ञान इंद्रियों के नहीं हो सकता, अतः स्पर्श के लिए पांच इंद्रिय तथा मन भी आवश्यक है। पांच इंद्रियों तथा मन के समूह को षडायतन कहते हैं। यदि गर्भस्थ शरीर तथा मन न हो तो षडायतन का अस्तित्व ही संभव नहीं है। गर्भ तथा भ्रूण के शरीर और मन को नाम रूप कहते हैं, किंतु गर्भावस्था में विज्ञान की संभावना तभी हो सकती है जब पूर्व जन्म के कुछ संस्कार रहें। अकस्मात विज्ञान संभव नहीं हो सकता है। पूर्व जन्म की अंतिम अवस्था में मनुष्य के पूर्ववर्ती सभी कर्मों का प्रभाव रहता है। कर्मों के अनुसार जो संस्कार बनते हैं उन्हीं के कारण विज्ञान संभव हो सकता है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि ऐसे संस्कार ही क्यों बनते हैं? ऐसे संस्कारों का कारण है अविद्या। क्षणिक दुखद असार एवं हे विषयों को स्थायी सुखद सार तथा उपादेय समझ लेना ही अविद्या या मिथ्या ज्ञान है। यही जन्म का मूल कारण है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दुख का कारण जाति है, जाति का कारण भव है, भव का कारण उपादान है, उपादान का कारण तृष्णा है, तृष्णा का कारण वेदना है, वेदना का कारण स्पर्श है, स्पर्श का कारण षडायतन है और षडायतन का कारण नाम रूप है, नाम रूप का कारण विज्ञान है, विज्ञान का कारण संस्कार है तथा संस्कार का कारण अविद्या है। ऊपर की श्रृंखला में हम 12 कड़ियां पाते हैं। महात्मा बुद्ध के सभी उपदेशों में इन कड़ियों का क्रम संख्या एक तरह से नहीं है, किंतु उपयुक्त विवरण प्रमाणिक माना गया है। इस श्रृंखला के कई नाम हैं, जैसे द्वादश निदान, भावचक्र इत्यादि। बुद्ध के इस उपदेश को अनेक बौद्ध चक्र घुमा घुमा कर इन दिनों भी याद करते हैं। माला जपने की तरह चक्र घुमाना भी कुछ बौद्धों के दैनिक पूजा वदन का एक अंग हो गया है। द्वादश निदान भूत, वर्तमान और भविष्यत जीवनों में व्याप्त है। वर्तमान जीवन का कारण अतीत जीवन है और वर्तमान जीवन का प्रभाव भविष्य जीवन पर पड़ता है, इसलिए तीनों की एक श्रृंखला है। द्वादश निदान इस श्रृंखला में आरंभ से अंत तक व्याप्त है। संपूर्ण द्वादश निदान को हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य जीवन इन तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। भूत जीवन के अंतर्गत अविद्या और संस्कार को रख सकते हैं। वर्तमान जीवन के अंतर्गत विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान को रख सकते हैं और भविष्य जीवन के अंतर्गत भाव, जाति और जरामरण को। एक बात का जिक्र करना अप्रासंगिक नहीं होगा, जो भारतीय दर्शन की विशेषता महात्मा बुद्ध की अपूर्व देन है, वह यह है कि शरीर की उत्पत्ति तथा वृद्धि एक अंतर्निहित वासना के कारण होती है। आधुनिक जीव शास्त्रज्ञों के अनुसार जीवन का विकास आकस्मिक कारणों से होता है, इसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। शरीर के किसी अंग विशेष की उत्पत्ति भी, जैसे चक्षु, श्रृंग इत्यादि, बिना किसी प्रयोजन के ही होते हैं, किंतु फ्रांस के सुविख्यात दार्शनिक बर्गसों इस मत को नहीं मानते। उनके अनुसार किसी भी वस्तु का विकास अंतर्निहित शक्ति की प्रेरणा से होता है। महात्मा बुद्ध ने इस मत को प्राचीन काल में ही प्रतिपादित किया है। हम ऊपर देख चुके हैं कि किस तरह बुद्ध ने यह बतलाया कि भव अर्थात जन्म लेने की प्रवृत्ति के कारण जन्म ग्रहण होता है, या विज्ञान के कारण गर्भावस्था में शरीर की वृद्धि होती है। यहाँ इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि बुद्ध तथा बर्गसों दोनों ही संसार को परिवर्तनशील मानते हैं। चौथा, तृतीय आर्य सत्य अर्थात दुख निरोध या निर्वाण। द्वितीय आर्य सत्य से यह स्पष्ट है कि दुख का कारण है, अतः दुख का कारण का यदि अंत हो जाए तो दुख का अंत भी अवश्यंभावी है। दुख नाश या दुख निरोध की अवस्था का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। दुख निरोध को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में भी हो सकती है। राग द्वेषों पर विजय पाकर शुद्ध आचरण या सील के साथ आर्य सत्यों का निरंतर ध्यान करते हुए यदि कोई मनुष्य समाधि के द्वारा प्रज्ञा प्राप्त कर लेता है तो उसका चित्त लोभ, मोह, राग, द्वेष से मुक्त हो जाता है। उसे काम, रूप या अरूप किसी विषय की तृष्णा नहीं रहती है। मानो वह मार पर पूर्ण विजय कर लेता है, अर्थात आध्यात्मिक शत्रु पर। इस तरह वह सर्वथा मुक्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को अर्हत कहते हैं। मोक्ष को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण राग द्वेष तथा तजन्य दुख के नाश की अवस्था है। निर्वाण निष्क्रिय अवस्था नहीं है, जैसा कि प्रायः लोग समझते हैं। यह सही है कि आर्य सत्यों के सम्यक ज्ञान के लिए मन को बाह्य वस्तुओं से तथा आंतरिक भाव से हटाना पड़ता है तथा आर्य सत्यों पर केंद्रीभूत कर उनका निरंतर विचार एवं मनन करना पड़ता है। किंतु एक बार अखंड समाधि के द्वारा जब स्थायी रूप से प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, तब निरंतर समाधि में मग्न रहने की आवश्यकता नहीं रहती। और न जीवन के कर्मों से विरत रहने की ही आवश्यकता रहती है। लोगों को यह मालूम है कि किस तरह महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी परिभ्रमण, धर्म प्रचार, संघ संस्थापन आदि कार्य करते रहे। इस तरह हम देखते हैं कि स्वयं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक का जीवन निर्वाण के बाद भी बिल्कुल कर्म में रहा है। महात्मा बुद्ध का उपदेश है कि कर्म दो तरह के होते हैं। एक तरह का कर्म राग द्वेष तथा मोह के कारण होता है, दूसरे तरह का कर्म बिना राग द्वेष तथा मोह का होता है। प्रथम प्रकार का कर्म हमारी विषयानुरक्ति की वृद्धि करता है तथा ऐसे संस्कारों को पैदा करता है जिनके कारण जन्म ग्रहण करना ही पड़ता है। दूसरे प्रकार का कर्म अनासक्त भाव में तथा संसार को अनित्य समझकर किया जाता है, जिससे पुनर्जन्म की संभावना नहीं रह जाती है। साधारण ढंग से यदि बीज का वपन किया जाए तो पौधे की उत्पत्ति होती है, किंतु यदि बीज को भूंज दिया जाए तो उसके वपन से पौधे की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसी तरह राग द्वेष तथा मोह में प्रेरित होकर कर्म करने से पुनर्जन्म हो जाता है, किंतु अनासक्त भाव से कर्म करने से जन्म ग्रहण नहीं होता। अपने संबंध में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण प्राप्ति के बाद बिल्कुल निष्क्रिय रहने से उनकी इच्छा हुई थी। यहाँ तक कि दूसरों को निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बतलाने के लिए भी उनकी इच्छा नहीं थी, किंतु दुख से पीड़ित मानव के लिए उनके हृदय में करुणा का संचार हुआ और वे लोक कल्याण के कार्य में लग गए। जिस नौका के द्वारा उन्होंने स्वयं दुख समुद्र को पार किया था, उसको नष्ट कर देना उन्होंने उचित नहीं समझा, बल्कि उन्होंने उसे जीवों के कल्याण में लगा दिया। इन बातों से स्पष्ट है कि निर्वाण प्राप्त करने पर अर्हत निष्क्रिय नहीं हो जाते हैं, वरन निर्वाण प्राप्ति के बाद दूसरों के प्रति उनकी प्रीति और भी बढ़ जाती है, जिससे उनके उद्धार के लिए वे अपने ज्ञान का अधिकाधिक प्रचार करते हैं। यदि स्वयं महात्मा बुद्ध का जीवन या संदेश उपयुक्त प्रकार का है तो यह विचार सर्वथा असंगत है कि निर्वाण का अर्थ जीवन का नष्ट होना है। निर्वाण शब्द का अर्थ बुझा हुआ है। यहाँ दीपक बुझ जाने के साथ जीव के दुखों के मिट जाने की तुलना की गई है। निर्वाण की इस व्युत्पत्ति के अनुसार कुछ बौद्ध एवं अन्य दार्शनिक निर्वाण को जीवन का अंत समझते हैं, लेकिन यह मत मान्य नहीं है। यदि निर्वाण का अर्थ जीवन विनाश हो तो यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। ऐसी हालत में उनकी निर्वाण प्राप्ति एक कहानी मात्र रह जाती है, किंतु उनके अपने शब्द इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध देव के अनुसार निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत है। निर्वाण से पुनर्जन्म तो बंद हो जाता है और साथ साथ दुखों का अंत हो जाता है, किंतु क्या इसका अर्थ यह होता है कि मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहता? हम ऊपर देख चुके हैं कि महात्मा बुद्ध इस तरह के 10 प्रश्नों की कोई चर्चा नहीं करते थे। उनके अनुसार ऐसे प्रश्नों का समाधान बिल्कुल बेकार है। ऐसे प्रश्नों के संबंध में वे मौन रहते थे, लेकिन उनके मौन धारण का यह मतलब नहीं होता था कि मुक्तात्मा का मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। उनके मौन का यह अर्थ हो सकता है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की अवस्था वर्णनातीत है। निधन के बाद निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की अवस्था के संबंध में यदि महात्मा बुद्ध ने कुछ कहा ही नहीं तो निर्वाण से कुछ लाभ है या नहीं, यह शंका उठ सकती है, लेकिन यह शंका निराधार है। निर्वाण से दो तरह के लाभ हैं। एक तो यह कि निर्वाण प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म और तज्जनित दुख संभव नहीं है, क्योंकि जन्म ग्रहण करने के लिए जो आवश्यक कारण हैं वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा लाभ यह है कि जो निर्वाण प्राप्त कर लेता है उसका जीवन मृत्यु पर्यंत पूर्ण ज्ञान और शांति के साथ बीतता है। निर्वाण के बाद जो शांति मिलती है उसकी तुलना सांसारिक सुखों के साथ नहीं हो सकती है। निर्वाण की अवस्था पूर्णतया शांत, स्थिर तथा तृष्णा विहीन होती है। साधारण अनुभवों के द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अधिक से अधिक हम इसके संबंध में यही सोच सकते हैं कि निर्वाण प्राप्ति के बाद सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। दुख विनाश की अवस्था की कल्पना हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि रोग, ऋण, दासत्व, कारावास आदि दुखों से मुक्ति का अनुभव जब तब हमें मिलता है। पूर्ण निर्वाण प्राप्त करने से पहले भी वासनाओं के आंशिक नाश होने से ही निर्वाण के कुछ कुछ लाभ मिल सकते हैं। राजा अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि श्रमण या सन्यासी होने से क्या लाभ है। इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि श्रामण्य अथवा श्रमण की अवस्था का फल सांदृष्टिक है, अर्थात ये कल्पना मात्र नहीं वरन साक्षात अनुभव गोचर है। शुद्ध सील से श्रमण का जीवन पवित्र होता है। मिथ्या दृष्टि से और लोभ मोह तृष्णा से मुक्त होकर मन स्वच्छ, शांत, संयत, आसक्त, प्रीत, समाहित होता है। ध्यान के द्वारा श्रमण को क्रमशः निस्संशय भाव, शारीरिक सुख, प्रेम, निरपेक्षता, प्रज्ञा और सब दुखों से मुक्ति मिलती है। नागसेन एक विख्यात बौद्ध धर्मोपदेशक थे। ग्रीस के राजा मिलिंद मिनेंडर नागसेन के शिष्य हुए थे। नागसेन ने उपमाओं की सहायता से राजा मिलिंद को निर्वाण का अवर्ण्य स्वरूप बतलाने की चेष्टा की थी। नागसेन ने कहा था कि निर्वाण समुद्र की तरह गहरा, पर्वत की तरह ऊंचा तथा मधु की तरह मधुर है इत्यादि। किंतु नागसेन ने यह भी कहा था कि जिनको निर्वाण का कोई भी अनुभव नहीं है, उन्हें इन उपमाओं के द्वारा निर्वाण की कुछ भी धारणा नहीं हो सकती है। अंधे को रंग का ज्ञान कराने के लिए युक्ति तथा उपमा से कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती है।